इतकाल अल-हवारियों, याद करें फिर जब हवारियों ने कहा था, अब ये सारी कन्वर्सेशन हो रही, याद करें जब हवारियों ने कहा था या ईसा इब्ने मरियम, ए ईसा इब्ने मरियम हल यस्तती और रब का यू नजील अलैना मायदा तम मिन समा, क्या इस्तेताल रखता है तेरा रब के हमारे लिए उतार दे एक मायदा आसमान से, क्या तेरा रब ये ताकत रखता है। बाज ने कहा कि उन्होंने वैसे कहा कि भाई जैसे हम किसी को कहेंगे क्या आप मेरा ये काम कर सकती हैं। बाज ने कहा कि देखें ये भी नए नए जाहिरा मुसलमान हुए थे तो उनको ये नहीं अंदाजा कि किस तरह अल्लाह के बारे में बात करनी है। बाज दफा होता है हम तो खैर बॉर्न मुस्लिम होके भी हमें ये समझ नहीं आती कि हम जब अल्लाह ताला के बारे में बात कर रहे थे तो उसके क्या आदाब है, उसका भी एक तरीका कार है। ऐसे नहीं है कि जैसे हम किसी के बारे में भी बात करते हो राह चलते के बारे में उस दौरान अल्लाह के बारे में बात करते, अल्लाह ऐसा क्यों नहीं करता, अल्लाह वो क्यों नहीं करता, अल्लाह ने क्या समझा, अल्लाह ने मेरे ऊपर ये क्यों किया, अल्लाह ने, किसके बारे में आप बात कर रहे हो। वो अभी नए नए मुसलमान हुए थे तो उन्होंने कहा क्या ताकत रखता है, इस्तात रखता है तेरा रब। और उलमा कहते हैं कि जो अदब है ना वो पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में से, अदब रिस्पेक्ट। तो ये एक बात कहना जबकि अल्लाह ताला तो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, तो इस तरह की बातें अल्लाह ताला ने तो अपने नबी के बारे में भी फरमा दिया था, जब बद्दू लोग सूरह गुजरात में आता है ना वो पीछे से आके उन्होंने आवाजें देनी शुरू कर दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या मोहम्मद कह के, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारो जैसे तुम आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हो, नहीं ये ना हो तुम्हारे आमाल ही जाया हो जाए। तो अल्लाह ताला की हस्ती उसकी जात जो है ऐसी नहीं है, जब अल्लाह के बारे में बात करें तो उसके इंतहाई रिस्पेक्ट और पता होना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं। हम अपने माँ बाप के बारे में बात करें तो बड़ी इज्जत से करें, हम किसी और जिससे मोहब्बत करते हैं उसके बारे में बात करें तो बड़ी लिहाज रख के करें, और अल्लाह ताला के बारे में बात करें तो कुछ कोई लिहाज ना हो और जो मुंह में आए वो बोल दे, तो ये नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। قال اتقوا الله, ईसा अलैहि सलाम ने सोच कहा अल्लाह से डरो, अगर तुम ईमान वाले हो तुम ईमान ले आए हो ना तो अब अल्लाह से डरो, ये कैसी बात कह रहे हो कि हमारे लिए एक मायदा उतारे आसमान से, एक पका पकाया खाना, एक दस्तरखान उतार दे हमारे लिए आसमान से उतर के आए हमारे सामने। तो आपको पता है इनकी पहले जो बनी इसराइल थे उनके ऊपर मनो सलवा उतर चुका था, तो यहूदियों में ही पहले वो आ चुके थे, अब इन्होंने भी ख्वान मांगा, उन्होंने कहा कि भाई मूसा अलैहि सलाम की जो उम्मत थी उनके ऊपर तो मनो सलवा उतरा तो आप भी तो अल्लाह के नबी हैं तो अगर आप हमारे लिए ले आए तो क्या बात है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, तो आप भी अल्लाह से कहें वो हमारे लिए नहीं उतार सकता क्या एक ख्वान। और आप देखिए ना खाने पीने की बातें, खाने पीने के ऊपर सारा वो आगे भी कह रहे हैं कालू नूरी, जब ईसा अलैहि सलाम ने कह दिया ना तुम अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरो, तो वो कहते हैं हम तो बस ये चाहते हैं कि हम, अब उनको रियलाइज हुआ कि हमने कुछ सही नहीं कहा, तो वो कहते हैं हम तो ये बस चाहते हैं कि हम खाएं उसमें से, हम खाना चाहते हैं उसमें से। तो ये मैं बताना चाहूंगी कि बास तो खाने पीने को इतना ज्यादा, ठीक है आपकी सर्वाइवल के लिए इंसान के जिंदा रहने के लिए खाना पीना एक जरूरत है और बहुत बड़ी जरूरत है, उसके बगैर इंसान नहीं रह सकता, लेकिन बास दफा जिंदगी का महवर खाना पीना बन जाता है ना, सोच में खाना पीना क्या खाएं आज, आज क्या पकाएं, आज किधर जाके खाएं, बस खाना खाना, वहां जाना है तो हमने क्या खाना है, उधर से आना है तो क्या खाएंगे। और बाज औरतें जिनका सारा दिन सिर्फ खाने पीने की सोच में, या खाने बनाने या खाने उठाने या खाने सर्व करने या खाने सजाने और खाने की वो बाजार से लाने और इसके अंदर ही गुजर जाते हैं, वो क्या जिंदगी में कोई प्रोडक्टिव काम कर सकती हैं बताएं, जिनके सुबह का खाना अलग पक रहा है, दोपहर का अलग पक रहा है, रात का अलग पक रहा है, अब उसी ग्रोसरी लाना, उसको पकाना, उसको सर्व करना, उसको फिर समेटना, उठाना, रखना, आधा से ज्यादा दिन तो इसी के अंदर गुजर गया, क्या करेंगी वो काम। तो ये जरूरत तक ही रखा जाए तो सही है, जब जरूरत से बढ़ के बस जिंदगी बना लिया जाए कि जिंदगी का मकसद क्या खाओ पियो बस, तो फिर भूल जाएं कि कोई और काम आप अपनी आखरत के लिए उसके लिए कर सकते हैं, फिर बस ये खाने के चक्करों में ही पड़े रहें। फिर तो अल्लाह को जाके यही कह देना कि फिर हम तो किचन में ही रहे बस सारा वक्त, हमें तो इसके बाहर की दुनिया ही नहीं पता, हमने क्या करना था। तो जिंदगी का मकसद नहीं है खाना पीना, जरूरत को जरूरत ही रहना चाहिए। कालू नुरीदु अन्ना कुल अमीना, वो कहते हैं हम उसमें से खाए पियेंगे, अब हम जाहिर है वो धोबी हैं, हम कपड़े धो धो के करते हैं, तो चलो हमारे लिए पका पकाया खाना आ जाएगा, हम उसमें से खाते रहेंगे। वो तत्मईना कुलूबुना, हमारे दिल भी मुतमईन हो जाएंगे। दिल मुतमईन किस तरह के, मतलब ठीक है हम आपके ऊपर ईमान तो ले आए हैं, लेकिन और हमारे दिल मुतमईन हो जाएंगे। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, ईमान तो वो सच्चा लाए थे, लेकिन जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, ये अल्लाह मुझे दिखा दे कि तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, तो अल्लाह तआला ने फरमाया कि इब्राहिम आपको यकीन नहीं, तो फरमाया नहीं मुझे यकीन तो है, लेकिन मेरे दिल को इत्मीनान चाहिए, मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा। सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं। तो फिर अल्लाह तआला ने वो परिंदों की बात कही थी। तो इसी तरह इन्होंने कहा हमारे, हम ईमान तो ले आए हैं, लेकिन हमारे दिल भी चलो मुतमईन हो जाएंगे कि हम देखेंगे कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम जो हमें बातें कहते रहे वो सच्ची हैं, और आसमान से इस तरह उतर रहा है, और इनकी दुआ के ऊपर देखो आसमान से उतर रहा है, वो नालामा अन सदा पता ना, और हमें ये भी पता चल जाए कि हम आप बिल्कुल सच्चे हैं, अभी भी मानने हैं, लेकिन आप आंखों से मौजा भी देख लेंगे, वो नकूना अलही हम इन शाहिदीन, और हम इस पर गवाह भी हो जाएंगे कि हाँ ऐसे ईसा अलैहिस्सलाम इतने सच्चे हैं, और लोगों को आगे आपकी सच्चाई की गवाही भी देंगे और आगे बताएंगे भी। अब आप देखिए सुभान अल्लाह, एक बात आप नोट करें, अच्छा ये बात तो ये इस तरह की डिमांड कर रहे हैं ना, एक मेरे नबी के भी साथी थे, सुभान अल्लाह, इतनी आप सोचे तबूक का जो सफर था ना, जिसको तबूक को कहते हैं जैशुल उसरा, सख्ती का तंगी का जो जैश था, उसमें इस कदर तंगी थी, सवारी का तो ये हाल था कि 18-18 आदमी एक ऊंट पे बारियां लेते थे सवार होने के लिए, और लंबा सफर है, गर्मी सख्त, और इतनी किल्लत थी खाने की कि एक खजूर खाते थे। और फिर लोगों ने बाद में, लोगों ने सहाबा से जब सुना तो वो बूढ़े हैरान हुए, अच्छा एक खजूर, वो कहते हैं एक खजूर भी हमें फिर बाद में गनीमत लगती जब वो एक भी खत्म हो गई, फिर उसी को चूसना शुरू हो गया, ये एक खजूर को भी हमें एक खजूर कोई दे देना तो हम उसको कुछ समझते नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं खाया, उनको एक खजूर थी। अल्लाह अकबर। फिर उन्होंने दरख्त के पत्ते खाए उसके बाद, यहां तक कि उनके होंठ जो थे वो सूज गए, और इतनी पानी वगैरह की किल्लत थी कि जो, हालांकि सवारियां तो उनके पास ज्यादा नहीं थी, 18 लोग एक ऊंट के ऊपर बारियां ले रहे हैं, तो सोचिए कितनी किल्लत थी, फिर भी चूंकि पानी नहीं मिलता था तो ऊंट जिबा करने पे मजबूर हो गए थे, ताकि उनके मेदों में जो उनकी आंतों में पानी वगैरह होता है ना स्टोर होता है, चलो वो ही पी लें। लेकिन उन्होंने नहीं ये कहा कि यार रसूलुल्लाह आप भी तो, जैसे उनके लिए मनोसलवा उतरा तो आप हमारे लिए क्यों मनोसलवा उतरवा देते, अल्लाह ताला से दुआ करें आपकी दुआ तो अल्लाह कबूल करे ना, ना कोई बात ही नहीं। सूरह आजाब में आप पढ़ते हैं तो जो जंगे आजाब का वाक्य आता है, कितने मुश्किल हालात थे कि एक सहाबी आके दिखाते हैं कि भूख से मेरा ये हाल हो गया है कि मैंने अपना कपड़ा दिखाया कि मैंने पत्थर बांधा हुआ है, पेट के ऊपर पत्थर बांधा है, कमर ही नहीं सीधी होती थी, भूख की ये आलम होता है ना, इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया था आपके पेट पे 2 पत्थर बंधे थे, इतने कितने दिन हो जाते थे कि कुछ खाने को नहीं मिलता, एक दिन भूख से बेचैन होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, देखा अबू बकर सिद्दीक भी निकले हुए, हजरत उमर भी निकले, वो चीज जो उनके साथ लाहक थी वही उनको भी थी, वो जिस चीज ने बेचैन करके उनको घर से निकाला तो उनको भी निकाला था, तो एक अंसारी के फिर बाग में गए थे, पता होगा आपको ये वाक्य। लेकिन वो ना वो कहते थे कैसे सुभान अल्लाह, वो लोग थे क्या उनको कभी फाके नहीं आए थे, इनकी तो कोई फाकों की बात नहीं थी, ये तो वैसे ही कह रहे हैं ना कि हमें एक दिखाएं, लेकिन वहां पे तो वाकई एक ऐसी जरूरत थी कि इंसान बोल उठता है कि अब तो उतरना चाहिए कुछ अल्लाह की तरफ से, और पैगंबर हमारे अंदर मौजूद है, फिर हमें किस चीज की फिक्र होनी चाहिए, अब आप अल्लाह से कहें वो उतार दे, क्या मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए सिर्फ उतर सकता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए नहीं क्या उतर सकता, आप अल्लाह के प्यारे नबी हैं, आखिरी नबी हैं, उसके महबूब है, तो आप दुआ करें ना हमारे लिए, कोई मायदा उतर आए, कोई मनोसलवा उतर आए, कुछ तो उतरे, नहीं कभी नहीं आप देखते पूरी सीरत के अंदर के कोई उन्होंने ऐसी डिमांड्स की हैं, वाकई नबी के सहाबी, फिर वही वाकई नबी के सहाबी थे, ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने उनको इतने परवाने दे दिए जन्नतों के और अपनी रजा के, इस दुनिया में उनको परवाने दे दिए थे, उन्होंने वाकई करके दिखाए थे वो काम, कैसा उनका सब्र था, कैसा उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान था। सुभान अल्लाह। तो वो कहते हैं कि भाई आप ऐसा करें, आप हम तो ये सिर्फ चाहते हैं और तो कोई ऐसा मसला नहीं है, तो ईमान तो हम लाए ही हुए हैं और बस अब और भी ज्यादा हमें हम जान भी लेंगे आपके, आप सच्चे हैं। इसका मतलब यानी हमें यहां से एक और बात पता चलती है कि वो ईमान ला चुके हैं मगर वो कहते हैं हम जानना चाहते हैं, हमें इल्म भी हो जाए कि आप सच्चे हैं। इसका मतलब है ईमान लाए मगर इल्म अभी नहीं था उनके पास। यहां से पता चलता है कि इल्म चाहे ना भी हो, ईमान सिर्फ मान लेने का नाम है, सिर्फ मान लेने का। बहुत सारे लोग बड़े बड़े इल्म के दावे करते हैं लेकिन ईमान नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं आप देखते हैं कोई भी इल्म नहीं होता, कोई गांव में इसमें रह रहा लेकिन ईमान के पक्के होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बहुत इल्मी होगा तो ईमान होगा। ईमान सबमिशन को कहते हैं कि इंसान झुक जाए, इंसान मान ले, और ईमान होता वही है जो बिन देखे मांगा माना जाए, असल ईमान वही है। देखें डुबकी खा के तो फिरौन ने भी कह दिया था कि मैं मूसा के रब पे ईमान ले आया, तो अगर डुबकियां खा के मानना है हमने जिंदगी के अंदर तो वो क्या ईमान है। बात तो ये है कि आप बिन देखे ऐसे ही माने, जिंदगियों में डुबकियां खाने से पहले ही मान ले। तो इन माए ना आए मान लेना जरूरी है। काला ईसा इब्न मरियम, तो उस वक्त ईसा इब्न मरियम ने कहा था अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना मा'इदतन मिनस समा, ए अल्लाह। अल्लाह कहने के लिए ना एक तो हम कहते हैं ना अल्लाह, एक है ए अल्लाह, तो इसको अरबी में कैसे कहते हैं अल्लाहुम्मा, ठीक है, अल्लाह के नाम के साथ हुम्मा लगा देंगे तो ए अल्लाह बन जाएगा, सही। तो आप देखते हैं कि जो कुरान की दुआएं हैं वो सारी रब्बाना से शुरू हो रही, रब्बाना आतिना, रब्बाना ला तुझे कुलूबना, रब्बाना ला तजालना, लेकिन जो मसनून दुआएं आप देखते हैं वो अल्लाहुम्मा से शुरू हो रही। यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम दोनों लफ्ज ला रहे हैं अल्लाहुम्मा रब्बाना, बहुत ही बेकरारी हो तो इंसान दोनों भी कह सकता है अल्लाहुम्मा रब्बाना, है अल्लाह है हमारे रब। तो इसी तरह आपको जैसे पता है कि सज्दे में भी आप दुआएं मांग सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सज्दे में कुरानी दुआएं मांग सकते हैं, मसनून तो मांग ही सकते हैं, कुरानी मांग सकते हैं, तो कुरान का पढ़ना सज्दे में मना है। तो अगर आप ऐसा करें कि जो कुरान की दुआएं हैं उनमें साथ अल्लाहुम्मा लगा देंगे तो फिर आपके वो कुरान नहीं रहेगा, जाहिर चेंज हो जाएगा, तो फिर आप वो दुआ मांग सकती हैं जैसे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना, कोई चीज भी आपने कुरान के दुआओं में से कोई भी मांगनी हो तो अंजिल अलैना माईदा तब मिन समा, नाजिल कर दे हम पर माईदा आसमान से, तकूनु लना ईदन ली अव्वलिना व आखिरिना, अल्लाह हमारे हमारे रब तो हमारे पर एक माईदा आसमान से नाजिल कर दे कि हमारे लिए ईद का दिन हो जाए, खुशी का दिन हो जाए, एक हमारे लिए खाने पीने का दिन हो जाए। ईद मतलब यही होता है खुशी का दिन, और वो दिन हमें यहां से पता चलता है वो दिन जो असल में तो शुक्राने का होता है ना, कि जब तू नाजिल कर देगा तो हम इसका शुक्र अदा करेंगे, इस पे खुशी मनाएंगे और शुक्र करेंगे। तो ईद खुशी जब आप मनाते हैं आप तो शुक्र अदा करते हैं आप, ठीक है, खुशी तो आप करें लेकिन शुक्र अदा करना ना भूलिएगा। तो ईद नेमतों की शुक्राने का दिन और ईद खुशी का दिन, और हम कहते हैं ईद बोरिंग, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए खुशी का दिन बनाया गया होता है, उसको नहीं बोरिंग कहना चाहिए, इसको अल्लाह ने खुशी का दिन बनाया। अब हम खुद ही उसको बोरिंग बना लेंगे, सोए पड़े रहे 11 बजे तक और उसके बाद उठे और फिर उसके बाद नाइट सूट में घूमते रहे और हमें किसी ने चूंकि दावत में नहीं बुलाया तो हमने अब कपड़े भी नहीं आज बदलने, तो फिर खुद ही आपने बोरिंग बनाया ना। अल्लाह ने तो आपके लिए वो खुशी का मौका दिया, अपनी खुशियां खुद जो बनाई हैं वो जितना मर्जी उसके ऊपर सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन ईद को जो है ना बोरिंग ही बनाए रखेंगे, क्योंकि आप एफर्ट नहीं करते बाकी खुशी के दिनों पे, आपका शादियां हो, आपकी कोई और कामयाबी आपको मिले तो आप उसमें भी आप सोए हुए पड़े रह सकते हैं, लेकिन आप एफर्ट करते हैं ताकि उसको इसकी खुशी मनाएं आप। तो ईद के लिए एफर्ट नहीं करनी, जो अल्लाह ने खुशी का दिन दिया सब मुसलमानों को। बाकी जो हमारी खुशी के दिन है वो तो पर्सनल लाइफ के है ना, ये हमारे दीन से वाबस्ता चीज है, तो इसके लिए इतमाम करना चाहिए। तो हमारे रब हमारे लिए नाजिल कर दे ताकि हमारे लिए वो ईद का दिन हो जाए, हमारे पहलों और अगलों के लिए, यानी हमारी नस्लों तक के लिए, वो आने वाले बाद तक के लिए वो ईद मनाते रहे इस दिन की। वो आया तब मिन, और एक निशानी हो जाए तेरी तरफ से कि अल्लाह ताला ने आसमान से एक चीज उतारी है। अब हालांकि देखें ईसा अलैहिस्सलाम इतने मोजे दिखाए, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि ये एक मोजा ही है ना, ये एक मोजा अल्लाह ताला से मांगा जाए। हाँ ईसा अलैहिस्सलाम अब अल्लाह ताला से मांगते हैं और कहते हैं अल्लाह तेरी एक निशानी हो जाएगी, वरजुक ना वा अंता खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह हमें रिस्क अता फरमा और तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अब देखा जाए तो अल्लाह ताला की निशानियां सिर्फ आसमान से मायदा उतर जाना ही अल्लाह की निशानी नहीं है क्या? बीज का जमीन को फाड़ के निकलना और उस बीज के ऊपर फिर वो सिटे लगना और उसके ऊपर फिर दाने आना और फिर किस तरह फलों का दरख्तों से लटकना, ये क्या सब मौजे नहीं है? मट्टी से क्या क्या चीजें निकल रही हैं, तो रोज के मायदा हैं जो हम देखते हैं। जरूरी नहीं आसमान से देखें ही कि नीचे उतर रहा है, तो फिर इंसान अगर नजर उठा के देखे और निगाहे इबरत के साथ देखे तो हर चीज में उसको अल्लाह का मौजा ही नजर आता है। कैसे जमीन ने उगा दी है ये सब कुछ। तो उन्होंने मांगा, लेकिन खैर ईसा अलैहि सलाम ने दुआ कर दी अल्लाह ताला से, अल्लाह तू हमें रिस्क दे और तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। तो हम भी मांग सकते हैं, अल्लाह मरजुक ना मानता खैर राजे, कहीं रिस्क के लिए हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह हमें रिस्क अता फरमा, तो सबसे ज्यादा तो बेहतरीन रिस्क देने वाला तू ही है। और ईसा अलैहिस्सलाम की यहाँ पे आजी देखें कैसे एक एक लफ्ज बता रहा है ना उनकी आजी। अब वरना वो कहते कि जहां मैं मुर्दों को जिंदा कर रहा हूं तो वहां पे वो मायदा उतारना कौन सा मुश्किल काम। आज तक कोई साइंस भी ना ये कर सकी कि मुर्दे को जिंदा करें, आज तक कोई तरह की दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली लेकिन कोई ये नहीं कर सका कि एक परिंदा बना के उसके अंदर क्या कुछ कर दें कि वो उड़ने ही शुरू हो जाए और जिंदा परिंदे की तरह बन जाए, ऐसा तो नहीं कर सके। कितने बड़े मोजे अल्लाह ताला ने उनके हाथ से दिखाए। तो लेकिन अदब और आजी में कोई फर्क नहीं, कोई बातें अल्लाह तू उतार सकता है क्या, तेरी इस्तेआत है, उन्होंने ऐसे नहीं कहा। देखिए उनकी दुआ के अल्फाज। और अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कयामत के दिन सुनवा रहे हैं ताकि पता चल जाए उनके मानने वालों को कि ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला से ऐसे बात करते थे, वो तो अल्लाह के सामने ऐसे आजजी का इजहार करते थे, वो तो अल्लाह के आगे ऐसे दुआएं मांगा करते थे। तुम कहते हो वो खुदा ही थे, वो खुदा क्या है, वो तो खुद खुदा से मांगने वाले थे, वो तो खुद खुदा के मोहताज थे। तो उनकी मोहताजी अल्लाह ताला ने याद दिलाई कि तो सब चीजें जो भी मोजे दिखाए वो भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया मैं इज़नी थे, और जो दुआ भी मायदा की मांगी वो तुमने मुझसे मांगी, वो खुद नहीं किसी चीज की ताकत रखते थे, खुद बेबस थे इस मामले में। कहा अल्लाह, वो खुदा होते तो खुद उतार देते। कहा अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला उस दिन फरमाएगा कि इनके जवाब में, इनकी दुआ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया था दुनिया के अंदर, इन्नी मुनज़्ज़िलु अलैकुम, कि यानी अब आपको ये बात याद कराई जा रही है कि कयामत के दिन ये बात हो रही है कि याद करो फिर जब अल्लाह ताला ने फरमाया था मैं उतार देता हूँ, उतारने वाला हूँ इसको तुम पर, लेकिन एक शर्त है, अल्लाह ताला को कोई मसला नहीं उतारने में, वो तो वाला कुल्ली शैइन कदीर है। तो फिर उनकी इस दुआ के ऊपर, ए ईसा आपकी इस दुआ पे अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं नाजिल करने वाला हूं इसको आपकी तरफ, लेकिन इसके बाद फमन यकफुर बादु मिनकुम, जो कोई कुफर करेगा इसके बाद, मायदा उतरने के बाद, बादु का मतलब क्या, मायदा उतरने के बाद, मिनकुम तुम में से, इन्नी उअज्जिबुहु अज़ाबल्ला उअज़ीबुहु अहद मिनल आलमीन, तो बेशक फिर मैं उसको वो अजाब दूंगा कि किसी को मैंने वो अजाब नहीं दिया वह जहान वालों में, कभी नहीं किसी के ऊपर वैसा अजाब आया जैसा कि इनको अजाब दूंगा जो नहीं फिर मानेंगे। इसलिए कि देखें, एक तो अल्लाह ताला की तरफ से वैसे ही मौजज़े, अल्लाह ताला ने बिन मांगे ही दिखा दिए मौजज़े। ईसा अलैहि सलाम ने ये जो सब करके दिखाया, अल्लाह ताला ने उनकी डिमांड पे नहीं, वो वैसे ही उन्होंने दिखाया। लेकिन जब कोई कौम डिमांड करती है मौजज़ों की, जैसे समूद ने डिमांड किया था साले अलैहि सलाम से कि हमें दिखाएं कि ऊंटनी पहाड़ को फाड़ के निकले और वो हामिला ऊंटनी हो, फिर वो बच्चा दे, फिर वो ऐसे। अच्छा, जब वो ऊंटनी फिर निकल आई और फिर भी नहीं माने तो फिर उनके ऊपर सजा आई। जब कोई कौम किसी मौजे को मांगती है, खुद मुंह से मांग के लेती है, उसके बाद फिर अल्लाह दिखा दे और वो ना माने ना, तो फिर उनके ऊपर सजा बहुत बड़ी आती है। और इनको भी यहाँ पे ये कह दिया गया। अच्छा, अब क्या वो मायदा उतरा था या वो नहीं उतरा था, इसके बारे में हमें ऑथेंटिक कुछ भी नहीं पता। बाज कहते हैं कि उतरा था और उसके ऊपर ये चीजें थी और फिर उन्होंने उसके ऊपर से खाया भी, और फिर उसके ऊपर से हुक्म ये था कि आपने इसको स्टोर नहीं करना वो उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या कहा पता नहीं, अभी मिले कि नहीं मिले तो उन्होंने चोरी करके रखना शुरू कर दिया, तो फिर उसके बाद वो उठ गया और उसके बाद कभी वापस नहीं आया। ये भी लिखी हुई है, इसराइली रिवायात है ना। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि मायदा नहीं उतरा था। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने ये शर्त लगा ली था कि फिर अगर कोई ना माना तो फिर वो अजाब आएगा ना कि जो कभी अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, तो अंबिया कभी भी खुद नहीं मांग सकते कि हाँ ठीक है फिर भी ये मौजा दिखा दिया जाए। जबकि इतने इससे पहले तो मौजे देख चुके थे सब लोग, तो अगर ये मौजा दिखा दिया जाता और फिर ना कोई मानता तो फिर क्या होता। तो इसलिए जिसने मानना होता वो मौजों के बगैर ही मान जाता है, जिसने ना मानना हो फिर उसके पास और बहाने, उन्होंने इसको भी जादू कह देना था फिर। तो ये इसलिए हमें ये बात एक और भी हदीस से भी पता चलती है कि हो सकता है कि ना ही उतराओ। ये तो इनकी बहुत ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं मिलती, वरना तो बहुत शोर मचता कि देखो हमारे तो मायदा उतर गया था, ये इतना ज्यादा नहीं इसका शोर मचता। दूसरा, एक मुस्नद अहमद की एक रिवायत है जिससे भी हमें थोड़ा सा ये पता चलता है कि शायद मायदा नहीं उतरा था। वो रिवायत यह है कि कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह से दुआ करें कि वो सफा पहाड़ी को सोने का बना दे, तो तब हम आप पर ईमान ले आएंगे। आपने फरमाया तुम बिल्कुल सच्चा वादा करते हो? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हम सच्चा वादा कर रहे हैं, हम आप पर ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, उसी वक्त जिब्राईल अलैहि सलाम उतरे और फरमाया अल्लाह ताला आपको सलाम कहता है, नबी अल्लाह आपको सलाम कहता है। और अल्लाह ताला फरमाता है अगर आप चाहें तो सफा पहाड़ी को सोने का बना देता हूं, लेकिन अगर उसके बाद इन लोगों ने कुफर किया तो मैं उनको वो अजाब दूंगा जो किसी को नहीं दिया हो। इस पे भी अगर आप चाहें तो फिर भी बना देता हूं, लेकिन अगर आप इससे बाज आ जाएं, ये मुतालबा ना करें और ये चीज मतलब नहीं करते, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर ये यानी इस चीज को छोड़ देते हैं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपके लिए, मैं इनके लिए तौबा और रहमत का दरवाजा खोल देता हूं। मैं इनके लिए क्या करता हूं? तौबा और रहमत का दरवाजा खुला रखता हूं। यानी अगर तो ये पहाड़ी सोने की बनवानी है तो ठीक है, लेकिन फिर है कि फिर अगर ना माने तो फिर इनके ऊपर अजाब है। दूसरा ऑप्शन ये है कि पहाड़ी तो सोने की ना बने लेकिन तौबा रहमत का दरवाजा कयामत तक के लिए खुला रहे, या इंसान की मौत तक के लिए खुला रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है, फरमाया अल्लाह माफ फरमा, अल्लाह माफ फरमा, तौबा रहमत का दरवाजा बस खोल दे। आपने ये चूज किया, खुद चूज किया कि अल्लाह मेरी उम्मत के लिए ये दरवाजा खोल दे, ये खुला रखना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चॉइस पर ही आज ये है कि हर इंसान के लिए मौत तक ये दरवाजा खुला रहता है, मेरे और आपके लिए भी खुला हुआ। अल्लाहु अकबर। जब जान निकलने लगती है ना, तो पहले पैरों की तरफ से निकलती है और फिर ऊपर से निकलती है। तो जब मौत की गशी तारी होने लगे, उस वक्त तक ये दरवाजा खुला। सुभान अल्लाह। तो इंसान जल्दी करे इसकी तरफ, इसलिए कि आजकल जवान मौतें बहुत हो रही हैं। बहुत आप सुन रहे होंगे जवान मौतों का, अचानक मौतें हो रही हैं, उनका इंसान सोच ही नहीं सकता। तो हम नहीं जानते, अगर हमने देर कर दी तो ये ना हो कि ये तौफीक ही ना मिले। तौबा क्या है? अल्लाह की तरफ पलट आना, पलट आओ, अल्लाह का दर खुला हुआ। तो इससे पहले कि ये दर बंद हो जाए, मौत का आना इस दरवाजे को बंद कर देगा हमेशा के लिए। तो इससे पहले कि ये बंद हो जाए, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है पलट आने की। जो माफ करने वाला है उसी ने दरवाजा खोला हुआ है कि आ जाओ तौबा कर लो, पलट आओ, पलट आओ, वापिस आ जाओ, मेरी तरफ मोड़ आओ। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए गनीमत जानिए, लौट आए अल्लाह की तरफ। अल्लाह के हाँ उसी के लिए जगह है जो इसी जिंदगी में इस चीज को रियलाइज कर देता है। मार के तो सबने ही कह देना है कि हाँ एक काश एक दफा दोबारा चले जाए, हाँ एक काश मुझे मौका मिल जाए, हाँ एक काश ऐसा हो जाता। वो फिर काश काश ही रह जाएंगे। तो इंतजार ना करें, अभी वक्त है, पता नहीं है कब खात्मा हो जाए। तो हमें ये दूसरी बात मिलती है कि हो सकता है कि फिर उन्होंने इस चीज से दस्तबरदार हो गए हों, इसको गिव अप कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए। मार कैफ ये सारी बातें करके अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें याद दिलाई कि अल्लाह ताला तो इस पे भी तैयार, पता नहीं उतरा या नहीं उतरा, लेकिन अगर अल्लाह ने उतारा या अल्लाह ताला ने जो इतने मौजे दिखाए ईसा अलैहि सलाम को, और फिर नेमतें जो इतनी दी ईसा अलैहि सलाम को, उसके बाद एंड में क्या बात है? तो सारी बातें हो गई, अब उसके बाद क्या? ये है क्लाइमेक्स जो बात है। वइज़ क़ाल अल्लाहु, इन सारी बातों के बाद अल्लाह ताला फरमाएगा ईसा अलैहि सलाम से, या ईसा बना मरियम, है ईसा इब्ने मरियम, अअंता कुलता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, क्या आपने कहा था लोगों से कि मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो, दो खुदा, मुझे भी खुदा बना लो, मेरी माँ को भी खुदा बना लो, अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़ के हमें खुदा बना लो। आप देखें, आप पूरी दुनिया के सामने इनके कितने फॉलोअर हैं, ईसाई कितने ज्यादा हैं इस वक्त, पूरी दुनिया का नंबर वन पे जो टॉप पे रिलीजन है ना, इसके मानने सबसे मानने वाले सबसे ज्यादा दुनिया में वो ईसाई हैं। ये आज के वक्त की बात है, और कितने उस वक्त से आज तक आ चुके, वो सब खड़े हुए हैं। और जिनका ये अकीदा था कि ईसा खुदा है, खुदा का बेटा नाउजु बिल्ला, या उनको खुदाई के अंदर कोई शिरकत है, या उनकी माँ भी खुदा, क्योंकि ट्रिनिटी में तो माँ भी है ना, माँ बेटा और बाप, ये खुदा है तो एक उसका बेटा है, एक अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह अकबर। तो ईसा अलैहि सलाम की जो ये पेशी होगी, ये कितनी मुश्किल होगी और कितना उनके लिए ये चीज टफ होगी कि उनसे सवाल किया जा रहा है, जबकि उन्होंने तो कहा भी नहीं था। उनकी हम्बलनेस आप देखेंगे, वो कहते हैं काला सुभान अल्लाह, तू पाक है, ये नहीं कि अल्लाह मैंने कब कहा, मैं कहा इनको कहने वाला नहीं, सुभानक से बात शुरू की, अल्लाह तू पाक, हर ऐब से पाक है, या अल्लाह मा यकूनु लिया नकूला मा लैसा बिका हक। देखें आप उन अंदाज, आप सिर्फ अल्लाह ताला ने दुनिया में बता के ना, सिर्फ इट्स नॉट जस्ट कि वो डिनाई कर रहे हैं इसको, एक बात होती है ना कि उन्होंने इनकार कर दिया, वो नहीं मानते कि मैंने तो नहीं कहा अल्लाह, ये भी बात हो सकती थी, मैंने नहीं कहा अल्लाह, अल्लाह तू पाक है, मुझे मेरी क्या मिजाल है कि मैं ऐसी बात कहूं, मेरा क्या हक बनता है, मुझे कैसे जेब देता है, मा यकूनु ली, मेरे लिए ये नहीं है, यानी मुझे कहां से ये हक हासिल है, या मुझे कहां से ये जायज है मेरे लिए, या मेरी क्या मिजाल है अल्लाह कि मैं ऐसी बात कहूं जिसका मुझे कोई हक ही नहीं कहने का। मेरा ये हक नहीं है कि मैं ऐसी बात कहूं। अल्लाह अकबर, ये मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो, और ये सदियां गुजरती जा रही हैं और वो उनको खुदा बना के बैठे हैं। आप सोचें, अंदाजा करें कि उस मखलूक का हाल क्या होगा जो ये सब सुन रही है, और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां इसी अकीदे के पीछे लगा दी होंगी, हशर के मैदान में उनकी हालत क्या हो रही होगी। वो ये मुकालमा सुन रहे हैं अल्लाह ताला और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान, और वो देख रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम की बेचारगी, और देख रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम की आजजी, और देख रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम कितने पावरलेस हैं। उनकी क्या हैसियत है कि वो एक बंदे ही हैं अल्लाह के, वो खुदा की किसी किसी भी उसकी सिफत या किसी भी उसकी मिल्कियत में शामिल नहीं है। उनका हाल क्या होगा जिन्होंने ये सोचा हुआ है कि वो तो जाके हमें वहां बचा लेंगे। उनका हाल क्या होगा जो ये सोचे बैठे हैं कि इन्होंने तुम्हारे गुनाह अपने सर ले लिए और सूली चढ़ गए। सुनाए ये आयतें उन लोगों को जो क्रिश्चियन है कि हमारा तो कुरान ये कहता है। कई लोगों के सामने जब ये आयतें सुनाई गई तो वो हक्का बक्का रह गए कि ऐसा होगा। वो जिसके दिल के अंदर अल्लाह ताला बात डाल दे, अल्लाह अकबर। लेकिन वो किस कदर मुश्किल वक्त होगा कि जब ईसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया जाएगा, और इसके अंदर ये कि आपने कहा था, और उन जबकि वो ये जानते हैं ये कितना बड़ा शिर्क है, अल्लाह मैं कैसे ये बात कह सकता हूँ, ना मेरी क्या मिजाज है ये बात कहने की। इन कुंत कुलतुहु फकद अलिमता, अल्लाह अगर मैंने कहा होता तो तू जानता होता, क्योंकि अंत अल्लाह मुल्क यू भागे आ रहा है ना, अल्लाह तू तो गैबों का जानने वाला, अल्लाह का मैंने कहा होता तो तुझे जरूर पता होता। तालमु माफी नफसी, तू तो हर चीज जानता है जो मेरे नफ्स में है, अगर ऐसी कोई चाहत होती ऐसा कभी कहा होता अल्लाह तुझे पता होता। अब देखिए वो कि बाज जगह पे आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त यानी अपनी आजी की इंतहा पे होंगे कि वो कह रहे हैं अल्लाह तुझे पता है मेरे दिल के अंदर क्या है। बोला आलम माफी नफसे कल्ला, मैं तेरे इल्म का मुझे नहीं पता, मुझे कुछ मैं तेरे इल्म को नहीं जानता, लेकिन तू तो मेरे सब सब कुछ जानता है, अंदर बाहर को जानता है जो मेरे अंदर है। यानी फिर वो एक तरह से बता रहे हैं कि मैं कैसे इलाह हो सकता हूँ, मैं कैसे खुदा हो सकता है, तुझे तो मेरा सब कुछ पता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, तू तो हर गैबों का सारे गैबों का तू बहुत खूब जानने वाला है, तो मैं कैसे खुदा हो सकता हूँ। अब देखें उनका तो किस्सा ही खत्म हो गया ना, उनका तो पत्ता ही कट गया जिन लोगों ने ये अकीदा रखा था कि ये भी खुदा है। आप देख लें वो बेबस है। अल्लाह, फिर वो आगे कहते हैं मा कुलतु लहुम इल्ला मा अमरतनी भी। अब देखो कि जो लोग अपने पैगंबर की बात का उनका पैगाम को सही नहीं मानते और उनके बाद गलत काम करते हैं, उनके पैगंबर को भी एक दिन कयामत के दिन जब पूछा जाएगा तो फिर देखो कैसे कैसे उनको भी एक यानी जवाबदेही तो देनी पड़ रही है ना। एक उनका चाहे दिखाया इन लोगों को जा रहा है ताकि वो देख लें कि ये कितने बेबस हैं, लेकिन फिर भी एक पैगंबर की तो पेशी हो गई ना। तो जो लोग जो उम्मत ये चाहती है कि हमारे पैगंबर को भी हम उस दिन सुर्ख रू करें और हम उनको प्राउड करें कि वो हमारे ऊपर फखर करें अपनी, तो वो उम्मत अपने काम भी तो सही करे ना। फिर तो वो कहते हैं ना मेरे लिए जो तूने मुझे हुक्म दिया था मैंने वो ही इनसे कहा। मैं मा कुलतु लहुम इल्ला से मतलब क्या है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह आप कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया इसमें बहुत हसर आ जाता है कि और कोई इलाह है ही नहीं सिवाय अल्लाह के। एक ये भी हो सकता था ना अल्लाह इलाह है बस, तो वो उसमें एक चांस है कि और भी कोई हो सकता है, लेकिन जब आप कहते थे ला इलाह इल्लल्लाह तो फिर नहीं कोई भी इलाह, फिर एक को सिर्फ आपने सेपरेट किया सिवाय अल्लाह के। इसी तरह यहाँ पे मा कुलतु लहुम, मैंने नहीं इनको कहा कुछ भी नहीं और कहा, यानी तीसरी कोई बात कही नहीं, इल्ला मा अमरतनी भी सिवाय उसके जो तूने मुझे हुक्म दिया था, अल्लाह मैंने सिर्फ उतना ही पहुंचाया, सिर्फ वही बातें इनको कही। इससे पता चलता है ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको ये नहीं कहा है कि मैं कोई खुदा का बेटा हूं, मैं कोई ये हूं, ये झूठ है जो सब इन्होंने बनाए हुए हैं झूठ। और मैंने क्या कहा वो भी वो उस दिन बताएंगे, अन अबुदुल्लाह रब्बी वरब्बकुम कि अल्लाह ही की इबादत करो। और इबादत क्या होती है? इताअत पूरी आजजी के साथ, जिसमें मोहब्बत भी हो, जिसमें फरमा बरदारी हो, यानी इताअत आजजी मोहब्बत, ये सब इबादत का जुज है। वो कहते हैं कि मैंने तो इनको कहा था कि अल्लाह की इबादत करो, इन्होंने किसकी इबादत शुरू कर दी? और वो अल्लाह जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, मैंने इनको ये कहा था। देखिए कुरान बता रहा है ये बात, हमें ढूंढने की कहीं और जरूरत नहीं कि ईसा अलैहि सलाम ने इनको पता नहीं क्या कह गए थे जो ये पीछे से इस तरह हो गए। नहीं, कुरान बता रहा है कि ईसा अलैहि सलाम ने हक बात इनको कही थी कि रब्बी से क्या पता चलता है वो मेरा रब है, मतलब क्या, यानी मैं तो गुलाम हूं, मैं तो एक अदना बंदा हूं उसका। उन्होंने कहा बेटा होना तो दूर की बात है, उन्होंने कहा किसी चीज की भी ये चीज का दावा किया कि मेरे पास कुछ इख्तियार हैं, कोई ऐसी स्पेशल पावर्स है मेरे पास, कोई मेरे पास भी कोई अथॉरिटी है, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा उस दिन। वो तो कह रहे हैं मेरा रब है वो, और किसी को रब मान लेने का मतलब है अपने आप को गुलाम मान लेना, बंदा मान लेना। तो जैसे तुम्हारा वो रब है, इसी तरह मेरा भी वो रब है। मैं को कोई नहीं है कि मेरा कोई स्टेटस कहीं और है, कि मैं कुछ और चीज हूं उसके, हाँ कोई और मेरा कोई कोई और रिश्ता है उसके साथ, नहीं। और देखिए इसके अंदर ना सब एक है, जो बंदा होने में तमाम इंसान एक ही हैं, चाहे वो पैगंबर हैं चाहे वो दूसरे इंसान हैं, सब अल्लाह के बंदे ही हैं। हाँ अल्लाह के हाँ किसी का मर्तबा मकाम ऊंचा है, लेकिन उससे उसका रिलेशनशिप अल्लाह के साथ डिफरेंट नहीं हो जाता कि वो कुछ और बन गए हैं अल्लाह के, कोई नाउज़ु बिल्ला कोई बेटे, कोई 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 और ज्यादा कुछ उसके किसी और रिश्ते में आ गए। नहीं, रिश्ता बंदे और रब का ही रहेगा। हाँ बंदों में कोई ज्यादा बढ़ के मर्तबे वाले होंगे, कोई कम वाले होंगे, ठीक है। वकुंत अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, और था मैं उन पर गवाह जब तक रहा मैं उनमें, जब तक मैं उनके अंदर था अल्लाह मैं इनके ऊपर गवाह रहा, मैं इनके ऊपर निगेबान रहा, मैं इनको देखता रहा, मैं इनको वॉच करता रहा। फलम्मा तवफ्फैतनी कुंता अलैहिम कुंता अंत अंत रकीब अलैहिम, तो तू उनके ऊपर निगेबान था अल्लाह जब मैं दुनिया से तूने मुझे उठा लिया। अच्छा अब यहां पे तवफ्फैतनी का मतलब, कादियानी लोग इसको ये कहते हैं कि देखा वो तो फौत हो गए, और यहाँ पे देखो तवफ्फैतनी का आया है लफ्ज, वो जब वो कहते हैं कि मैं फौत हो गया तो अल्लाह तू पीछे उनका निगेबान था। खुदा के बंदो आप देखें यहाँ पे किस वक्त बात हो रही है, ये डायलॉग कब हो रहा है? कयामत के दिन, कयामत के दिन तक पहुंचने तक ईसा अलैहि सलाम फौत भी तो होंगे ना, या नहीं? अभी नहीं फौत हुए लेकिन फौत होंगे ना आके, तो वो कहते हैं कि नहीं वो फौत हो चुके हैं। देखा ये लोग कहते हैं कि नहीं वो उठाए गए, वो तो फौत हो चुके हैं, तो वो यहां से साबित करते हैं, और फिर उसके बाद अपने मिर्जा कादियानी को अपना मसीह मौऊद कहते हैं कि वो दोबारा फिर उनकी शक्ल में आए दूसरे मसीह बन के। और इसी तरह बाज ऐसे लोग भी जो कि हदीस को नहीं मानते या अपनी सेलेक्टिव अहादीस को मानते, वो भी यहां से ये ले लेते हैं कि ईसा अलैहि सलाम तो फौत हो गए, और देखो ना वो जाके वहां पे उस वक्त कहेंगे भी कि या अल्लाह जब मैं फौत हो गया हुआ था तो पीछे से तू इनका निगेबान था, कि तू इनको देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता फिर कि क्या हुआ मेरे पीछे से। तो इनमें वो लोग जो गांधी साहब को बहुत सुनते हैं और बहुत ही पसंद करते हैं, वो भी देख लेंगे, उनका भी यही मौकफ है, वो भी इस चीज को कहते हैं कि नहीं जी ईसा अलैहि सलाम ने नहीं आना, और वो फौत हो चुके हैं। जबकि कुरान को पहले तो बताए ना कि हमने कुरान को समझना कहाँ से है, गांधी साहब से समझना है या किसी और स्कॉलर से समझना है या कहाँ से समझना है या किसी हदीस से समझना है, बताए। जब अहादीस इतनी ज्यादा हैं कि तवातुर, यानी तवातुर मतलब ये होता है यानी इतने ज्यादा सहाबा ने रिवायत की हो कि उनका झूठ पे मिलना नामुमकिन है, जब इतनी सारी अहादीस हैं ईसा अलैहि सलाम के दोबारा नजूल की, तो फिर हम इस हकीकत को कैसे डिनाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो जमाना करीब है कि ईसा बिन मरियम तुम्हारे दरमियान एक आदिल हाकिम की हैसियत से नाजिल होंगे। वो सलीब को तोड़ देंगे, वो खिंजीर को मार डालेंगे और जिजिया खत्म कर देंगे। उस वक्त माल की इतनी कसरत हो जाएगी कि उसे लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। उस वक्त का एक सज्दा दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर होगा। ये बुखारी की रिवायत है, मगर इनको क्या बुखारी हो या कुछ भी हो, उनको नहीं फर्क पड़ता, सबको झुटला दिया। सूरह जुखरुफ में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईसा अलैहि सलाम जो हैं ये कयामत की एक निशानी है। सूरह जुखरुफ आयत 61 आप नोट कर लीजिए। ईसा अलैहि सलाम के पीछे बात आ रही है और अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नहु ला इल्मुल लिसाअति, वो है कयामत की निशानियों में से एक निशानी, लिहाजा तुम कयामत के आने में शक ना करो। ठीक है, इसके अलावा मुस्लिम में भी इतनी सारी रिवायात हैं जो ईसा अलैहि सलाम की आमद पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम ईसा बिन मरियम उतरेंगे, हुकूमत करेंगे, अदलो इंसाफ कायम करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, जिजिया नहीं लेंगे, जवान ऊंट को छोड़ देंगे, इस पर कोई मेहनत नहीं करेगा यानी उसे कोई काम नहीं लेगा, लोगों के दिलों से कीना बोझ और हसद जाता रहेगा। ईसा अलैहि सलाम लोगों को माल देने के लिए बुलाएंगे लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, नहीं माल लेने वाला कोई नहीं होगा, कोई सदका खैरात नहीं लेगा, सबके पास इतनी फरागी होगी, इतना माल होगा। और भी बहुत सारी अहादीस है। ईसा अलैहि सलाम का हुलिया बताया गया, किस हुलिये में उतरेंगे, वो जगह बताई गई कहाँ पे वो उतरेंगे, वो आके दुनिया में क्या क्या काम करेंगे वो बताए गए। लेकिन सारी अहादीस, चलो एक होती, बंदा कहता है कि भाई चलो एक के अंदर कोई गलत फहमी कि किसी को हुई या क्या, बुखारी की है, मुस्लिम की है, यानी ये तो सही है इनकी अहादीस है। और फिर इतनी ज्यादा कसीर तादाद में इतने सारे रावियों के साथ हैं, फिर उसके बाद क्या ना, देखो जी यहाँ पे तो लिखा हुआ है, जब ईसा अलैहि सलाम खुद कह रहे हैं कि जब मैं फौत हो गया था, तो एक तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ ये आयत अकीदा लेने की नहीं है, यहाँ पे तो कयामत के दिन का डायलॉग चल रहा है, बात ये है ही नहीं है। नंबर टू बात, तवफ्फैतनी का मतलब वफ़ाया से है, उठा लिया जाना, पूरा पूरा किसी चीज को ले लेना। तो जब तवफ्फैतनी का लफ्ज फौत होने के लिए भी आता है और पूरा पूरा उठा लेने के लिए भी आता है, ले लेने के लिए भी आता है, जब ईसा अलैहि सलाम के ऊपर वो ये उन्होंने इल्जाम लगा के उनको सलीब पे चढ़ाने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने उनको पूरा का पूरा जिस्म और रूह समेत उठा लिया था। और हमारा ये अहले सुन्ना वल जमा का ये अकीदा है कि ईसा अलैहि सलाम ने वापस आना है। जो इस अकीदे से हट के कोई बात करता है वो अहले सुन्ना वल जमा के अकीदे के खिलाफ बात कर रहा है, क्योंकि अहले सुन्नत का तो अकीदा यही है। ठीक है, वो अपनी एक अलग डेढ़ इंच की मस्जिद खड़ी करना चाहे तो फिर ठीक है। तो एक तो पहली बात ये कि वो अगर ये कहती हैं कि जब अल्लाह तूने मुझे उठा लिया था तो फिर मुझे नहीं पता पीछे इन लोगों ने क्या किया। पीछे इन्होंने, आपको पता है, बाद में एक बादशाह आया था, वो पहले यहूदी था, फिर उसने बहुत टॉर्चर किया ईसाइयों को, बहुत टॉर्चर किया। और उसके बाद एक दिन वो कहीं जा रहा था, उसने कहा कि मेरे शाऊन था शायद उसका नाम, शाऊल या शाऊन कुछ इस तरह से नाम था, बाहर गया वो कहीं जा रहा था, उसने कहा मैंने आसमान से कोई बात, इसने घड़ी के आसमान से देखा एक रोशनी आई है, और फिर उसने कहा रोशनी ने, मैंने कहा क्या हो तुम, तो उसने कहा मैं ईसा हूं, और फिर उसने कहा कि तुम मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हो, तो फिर उसने कहा कि अब मैं ईसाईयत कबूल करता हूँ। तो उसने अपना नाम बुलस रखा था, फिर बाओ बा वाओ लाम सी बुलस उसका नाम फिर था, उसने अपना नाम फिर ये चेंज करके क्रिश्चियन नेम रखा। फिर उसने वो इस क्रिश्चियनिटी के अंदर ये ट्रिनिटी का अकीदा और इतनी चीजें उसने निकाली, कई इबादत वो खत्म कर दिया, कई को खुद ही शुरू कर दिया, कई हलाल हराम कर दिए, कई हराम हलाल कर दिए, खंजीर को जायज कर दिया, ये सारी चीजें फिर उसने बाद में की। ठीक है, तो ईसा अलैहि सलाम कह रहे हैं कि मुझे जब तूने उठा लिया था तो मुझे नहीं पता अल्लाह इन्होंने पीछे से क्या किया, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता, तो हौज़े कौसर पे होंगे, देखेंगे, सोचेंगे ये मेरे उम्मती हैं, तो फरिश्ते आगे कहेंगे ये आपकी उम्मती नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता इन्होंने आपके पीछे से कितनी बिदतें, आपके दीन में कितनी नई नई चीजें ईजाद कर ली थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको परे कर देंगे। फिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई आलिमुल गैब नहीं, वो आके देख तो नहीं रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ईसा अलैहि सलाम भी आके तो नहीं देख रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उनको अल्लाह ने उठा लिया। ठीक है, और अगर उनको फौत करने का भी अगर हम मानना लेते हैं तो उन्होंने फौत भी तो होना है, जब आएंगे तो फौत हो ही चुके होंगे जब कयामत में पहुंचेंगे, फौत हो चुके होंगे, तो उनको नहीं पता कि उनके पीछे से फिर उसके बाद क्या हुआ। तो इस चीज को यहां से हम अकीदे का मसला बना के यहां से कोई अकीदा नहीं ले सकते, बल्कि इसको इसी पे रहने देना चाहिए कि जो डायलॉग अल्लाह ताला का ईसा अलैहि सलाम के साथ हो रहा है, और उस वक्त वो कहते हैं, अल्लाह जब तूने मुझे उठा लिया था तो मैं नहीं जानता फिर क्या हुआ पीछे से, तू ही फिर निगरान था इनके ऊपर। मान ताला कुल्ली शहीन शहीद, अल्लाह तो हर जमाने का और पिछले और अगले हर चीज का तू ही गवाह है। इन तो अदिब हूं, अब देखें जरा ईसा अलैहि सलाम की ये भी एक, यानी इस कदर जबरदस्त आयत है ना, इन तो अज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। अब ईसा अलैहि सलाम जब ये बोल रहे होंगे तो क्या हाल होगा कि जब वो खुद कहेंगे, ए अल्लाह अगर तू इनको अजाब दे तो तेरे ही बनते हैं, अल्लाह ठीक है इनका जुर्म बहुत बड़ा है, मैं नहीं कुछ कर सकता और मैं नहीं कुछ कह सकता, ना मेरा कोई इख्तियार है, अल्लाह अगर तू इनको अजाब देता है तो हमको पता है ना, एक बात उलमा लिखते हैं बिल्कुल सही बात, पता नहीं किसी को समझ आए या नहीं आए, लेकिन ये हक बात है किसी को समझ आ जाए तो बस बताने के लिए, कि अगर अल्लाह ताला सारी मखलूक को जहन्नुम में भी डाल देना तो ये उसका अदल है, ये उसका अदल है, जुल्म नहीं है, ये उसका अदल है, क्योंकि मखलूक में से कोई उसका हक नहीं अदा कर सकता, और अगर अल्लाह ताला किसी को जन्नत में डाल दे तो ये उसका फजल है, उसकी रहमत है, ये भी उसका हक नहीं है, समझ आई। तो अल्लाह सारी मखलूक को भी जला दे तो उसका अदल ही है, हमारा हक नहीं कि हम कहेंगे अल्लाह हमें क्यों तूने इस तरह कर दिया, ये तो हमारे साथ ना इंसाफी है ना, क्योंकि उसका हक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, जो कभी कोई इंसान नहीं पूरा कर सकता, चाहे वो पैगंबर ही क्यों ना। तभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी आमाल की वजह से मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा, सिर्फ अल्लाह की रहमत ही है, कोई इंसान नहीं अल्लाह का हक दे सकता। तो इन तो अज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, ए अल्लाह अगर तू उनको अजाब दे तो अल्लाह तेरे बंदे, जब तेरे बंदे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, अल्लाह तुझे कोई रोक नहीं सकता, तेरे फैसले को कोई बदल नहीं सकता, तुझसे कोई पूछ नहीं सकता, तेरे पर कोई एतराज नहीं कर सकता। ईसा अलैहि सलाम की बेबसी आप अंदाजा करें यहाँ पे, ये कहते हैं वो हमें बचा लेंगे उस दिन, वो ये कहेंगे वाकई जुर्म तो अल्लाह इनका इतना बड़ा है, तू अगर अजाब देना चाहे अल्लाह तुझे कौन कुछ, तेरे बंदे हैं, तेरी मखलूक है, ईसा अलैहि सलाम की थोड़ी मखलूक है, वो थोड़ी ये कहेंगे अल्लाह मेरे मुझे तो ये बड़ा मानते थे ना, अल्लाह इनको छोड़ दे क्योंकि इन्होंने मुझे तो बड़ा बड़ी रिस्पेक्ट दी इन्होंने मुझे, नहीं ना, तेरे बंदे, तेरा तेरी ये कहते हैं ना, जिसका माल है उसकी मिल्कियत है, वो जो चाहे अपने माल के साथ करे, कौन तीसरा बंदा कौन होता है कुछ कहने वाला, किसी की बकरी है वो उसको जिबा करे, वो उसको रखे, वो उसको खिलाए नहीं खिलाए, जो मर्जी करे, तीसरा बंदा उठ के कोई कहे तो वो तो कोई जेब भी नहीं देता उसको कि वो कुछ कहे, वो मालिक कहेगा तुम कौन होते कुछ कहने वाला, मेरी चीज है मैं जो मर्जी करूं, अल्लाह तेरे बंदे हैं तू जो मर्जी करे। सोचें आप जो रसूल, अरे ये ईसा अलैहि सलाम कोई छोटे पैगंबर नहीं है, छोटे तो कोई भी नहीं, लेकिन ईसा अलैहि सलाम उन पैगंबरों में से हैं जो उलुल अज़्म पैगंबर हैं, आम पैगंबर नहीं है, उलुल अज़्म बड़े मर्तबे वाले, अल्लाह के यहाँ जो 5 पैगंबर हैं जो उलुल अज़्म कहलाते हैं, उनमें से एक ईसा अलैहि सलाम है, और उनका हाल देखें आप, और उनका अंदाज देखें अल्लाह के आगे, जरा सी भी कोई अकड़ नहीं है, जरा सी भी कोई अथॉरिटी या पावर की कोई कोई दावा नहीं है। वह इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह और अगर तू इनको बख्श दे तो अल्लाह ताला तू जो मर्जी करे, तू गालिब है, तेरे पास सारी अथॉरिटी है और तेरे पास हिकमत भी है, तुझे ही पता है, तेरी हिकमत से ही होगा ये भी, जो जिसको चाहे माफ कर दे, जिसको चाहे अजाब दे, तो तेरे पास इख्तियार है, तुझे कोई रोकने वाला नहीं है, और अल्लाह को वाकई अल्लाह ताला को कोई पूछ नहीं सकता, अल्लाह पूछने वाला, ये जो बातें हैं ना यहाँ दुनिया में, मैं अल्लाह से जाके ये पूछूंगी, मैं अल्लाह से जाके, नहीं। तो सही मुस्लिम की एक रिवायत में जो आता है ना, एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को खड़े हुए हैं और आयतें पढ़ रही हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी है, मेरे परवरदिगार इन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया, यानी इन बुतों ने, इनमें से जिसने मेरी पैरवी की वो तो मेरी जमात से, और जो मेरी नाफरमानी करेगा तो अल्लाह तू बख्शने वाला रहम करने वाला है। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम की इसी बात को तिलावत करते जाते थे, इन तो अज़िबहुम फ इन्नहुम इबादुक इन तगफिर लहुम फ इन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं ज़ारो कतार, यानी अल्लाह अगर तू इनको अजाब दे, तेरे बंदे हैं अल्लाह, तुझे किसने पकड़ना, क्या सारों को ही उठा के डाल दे जान, अल्लाह तू अगर इनको माफ कर दे तो तेरा इख्तियार है। तो इन रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं, फिर दोनों हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह उम्मती कि मैं नहीं अल्लाह ये कहता कि अल्लाह तू इनको बेशक अजाब दे, अल्लाह मैं कहता हूँ मेरी उम्मती, अल्लाह मैं कहता हूँ मेरी उम्मती। तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहि सलाम को हुक्म दिया, जाओ जाके मेरे नबी से पूछो क्यों रो रहे हैं इतना। जिब्राइल अलैहि सलाम आए, जब मुस्लिम में रिवायत है कि हालांकि अल्लाह जानता है, सबको बताना था ना, जिब्राइल अलैहि सलाम आए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, अल्लाह फरमाते हैं आप क्यों रोते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह बयान फरमाई, मेरी उम्मती, अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहि सलाम से फरमाया जाओ जाके कह दो कि आपकी उम्मत के बारे में हम आपको खुश कर देंगे। अल्लाहु अकबर, पता नहीं है हम तो अपने लिए भी कभी डर के मारे इस तरह दुआएं मांगी होंगी कि नहीं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है। उनका तो एहसान ही हम ना कितना भी चाहे हम उनका एहसान नहीं दे सकते, जिस तरह उन्होंने हमारे लिए तड़प के दुआएं मांगी, अल्लाहुम्मा उम्मती कि वो नबी तो ये कहेंगे लेकिन अल्लाह मैं ये नहीं कहता, मैं कहता तू मेरे उम्मतियों को माफ कर दे। और अल्लाह ताला फिर फरमाएगा, अब ये बस एंडिंग है सारी उस कन्वर्सेशन का और बात का, कहां से बात शुरू हुई थी, सारे रसूल जमा है और उनकी पेशी हो रही है, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की बात के है, ईसाइयों समझ जाओ ईसा अलैहिस्सलाम के पास कोई इख्तियार नहीं, वो तो बेबस है, वो तो उस दिन खुद हाथ झटक देंगे, वो तो उस दिन कहेंगे कि अल्लाह मैंने मैंने क्या कहना, अल्लाह तेरी तेरे बंदे हैं तू जो चाहे करे इनके साथ। तो ये उनको समझा के अब लास्ट बात आती है, अल्लाह ताला फरमाएगा उसके बाद हादा यौमु यनफाउ सादिकीना सिदकुहुम, ये वो दिन है जिस दिन सच्चों को उनका सच काम आएगा, उनको फायदा देगा, सच बोलने वालों को उनका सच फायदा देगा। आज क्या सच है इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है कि इस कायनात का मालिक खालिक इसका रब इस इलाह एक ही है और वो अल्लाह है, ये तौहीद जो है ना ये सबसे बड़ा सच है। और जानते हैं सबसे बड़ा झूठ क्या है, शिर्क, ये सबसे बड़ा झूठ है। तो आज के दिन कहा जाएगा, ऐलान होगा आज के दिन सच्चों को उनका सच काम आ जाएगा, यानी तौहीद पे जो चलने वाले हैं, जिन्होंने अल्लाह को एक मान के जिंदगी गुजारी अपनी, उसके सिवा किसी को अपना रब ना बनाया, अपना इला ना बनाया, उसके सिवा किसी के आगे ना झुके, आज उनको उनकी सच्चाई काम आ जाएगी। तो सच वैसे भी काम आता है, सच सिर्फ तौहीद में ही नहीं, हर चीज में सच जो है वो अल्लाह को पसंद है, और ये काम आ जाएगा कयामत के दिन, और झूठ इंसान को रुसवा कर देगा। क्योंकि एक हदीस से हमें पता चलता है कि इंसान झूठ बोलता जाता है, बोलता जाता है, झूठ भी एक आदत होती है ना, जब इंसान को झूठ की आदत पड़ जाती है ना तो फिर वो हटता नहीं है, फिर वो बेकार बातों पे जिसपे कहीं जरूरत भी नहीं वहां पे भी झूठ ही बोलता रहता है। किसी ने कुछ पूछा तो उसको झूठ बताना है, सच ना बताओ, वो सच बताएंगे तो पता नहीं क्या हो जाना। तो झूठ हर चीज में, झूठ फायदे की है किसी चीज की भी है, आम बात है, को किसी से मुतल्लिक है, उसके अंदर झूठ बोलते जाना, हत्ता कि एक दिन उसका नाम
अल्लाह के पास आसमानों में झूठा लिख दिया जाता। सोचें, किसी का नाम लिखाओ और उसके आगे लिखाओ झूठी, और इंसान सच बोलता रहता है बोलता रहता है, हत्ता कि अल्लाह के पास उसका नाम सच्चों में लिख दिया जाता है। वहां पे भी कोई किताब है ना जिसमें नाम लिखे जाते हैं, वहां पे जाके हम नाम मिटा नहीं सकते कि नहीं नहीं ये तो गलत लिखा हुआ है, मैं तो मिटा के अपना नाम सच्चों की उसमें लिख दूं। नहीं, पता नहीं हमारा नाम किसमें लिखा, हम क्या करते हैं, सच्चों में लिखा होगा कि झूठों में होगा। जब हमारे कोई काम हमने कराना हो, कोई काम बन नहीं रहा हो, तो हम फौरन झूठ पे आ जाते, झट से झूठ बोलते। वो झूठ नहीं, उस दिन सच्चों को सच काम आएगा, सच बात में, सोच में, जिंदगियों के अंदर सच्चाई, सच्ची जिंदगी गुजारे। एक जिंदगी भी होती है बनावटी झूठी जिंदगी, वो जो आप नहीं है वो बन के दिखाते हैं, वो भी झूठी है। सच्चे रहें, अपने आप से भी सच बोलें, अपने आप को भी झूठ, इंसान अपने आप से भी पता है झूठ बोलता है, वो बातें अपने आप को कह कह के तसल्लियां देता है जो वो नहीं होता या नहीं करता, लेकिन बस अपने आप को कहते रहना ऐसे, इतना झूठ बोलो कि वो भी सच लगने लगे, ये आज हमारा हाल है। ये अपने आप को झूठी तसल्लियां, अपने आप को झूठ, झूठी जिंदगी, झूठे बोल, झूठी सोच, झूठी तसल्लियां, सब चीजों में झूठ है। जब झूठ शुरू होता है ना, तो फिर वो कैरेक्टर ही झूठ के साथ बन जाता है, फिर हर चीज में ही झूठ होती है। तो इसलिए सच्चाई वाली जिंदगी गुजारनी है, सच्चे होके रहो, मत लोगों की खातिर झूठ बोलो। क्या हम हमें समझ लेंगे अगर हमने झूठ बोल के इनके सामने कोई वैल्यू भी बना ली, क्या फर्क पड़ेगा। एक दिन तो अल्लाह को ही मुंह दिखाना है ना मुझे, हमें समझने को बहुत बड़ी चीज भी समझ लेंगे, क्या क्या तमगे मिल जाएंगे। एक दिन उन्होंने भी मिट जाना, हमने भी मिट जाना, तो क्यों झूठ बोल के अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, या अपने आप को झूठ बोल बोल के तसल्लियां देना चाहते हैं, या झूठी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, क्यों। तो देखिए कितनी ये बड़ी बात है कि उस दिन सच्चों को उनका सच काम आ जाएगा, सच्ची जिंदगी गुजारनी है बस। और ईसाइयों ने तो सारी अकीदा ही झूठ के ऊपर खड़ा हुआ, उनका तो अकीदा है ही, बेस ही झूठ है जिसकी, आगे क्या, वो आगे जितना मर्जी कोई काम करते रहे, जितनी मर्जी भलाई के, इंसानियत के, असल असल दीनी जी इंसानियत है ये, भाई जब जिस चीज की बेस ही गलत है, झूठ के ऊपर है, वो फिर क्या आगे होगा उसका। और तौहीद पे इंसान कायम रहे, ये है सच, तौहीद को ना कभी छोड़े। लहुम जन्नतुन तजरी मिन तहतिहा अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, उनके लिए वो जन्नतें होंगी जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, खालिदीन फीहा अबदा, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, हमेशा हमेशा। लहुम जालना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, अल्लाह हमें भी इनमें शामिल फरमा दे। खालिदीना फीहा ही कहना काफी था, अबदा कह के कह दिया, फिक्र ना करो कभी भी नहीं निकलोगे ऐसी जन्नतों से। रदियल्लाहु अन्हुम वरदु अन, सबसे बड़ा इनाम तो अल्लाह की रजा है ना, तो इसलिए पहले अल्लाह की रजा की बात की गई, अल्लाह राजी हो गया उनसे जो सच्चे हैं, और वो राजी हो गए उससे। वो राजी किस तरह हो जाएंगे, उनको इतना कुछ अल्लाह अता फरमाएगा कि वो राजी राजी होंगे, उनसे पूछा भी जाएगा अब राजी हो, राजी हो तुम, वो कहेंगे हम क्यों ना राजी हैं, अल्लाह ने हमें अजाबों से बचा दिया, हमें ये जन्नत नेमतों भरी दे दी, हमें ये सारी इतना कुछ अता फरमा दिया, हम क्यों ना राजी हों। तब अल्लाह ताला फरमाएगा कि अभी एक वादा अल्लाह के जिम्मे है जो पूरा होना है, और फिर अल्लाह ताला अपना दीदार अता फरमाएगा। तो जन्नती तो राजी राजी होंगे, लेकिन सब पहले अब अल्लाह ताला ने अपनी बात इसलिए की कि अल्लाह का राजी होना ये बहुत बड़ी बात है। इंसानों को तो थोड़ा भी मिल जाए तो फिर भी कह देते हैं अच्छा चलो ठीक है इतना मिल गया मुझे, तो लेकिन अल्लाह ताला का राजी हो जाना का मतलब ये है कि अल्लाह ने उनके अमल कबूल कर लिए, अल्लाह को पसंद आ गए। और दुनिया में भी इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह से हमेशा राजी रहे, उसके फैसलों से राजी रहे, उसके हुक्मों पे राजी रहे, उसके दीन पे राजी रहे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये है बड़ी कामयाबी जिसको हासिल हो जाए। अल्लाह तू हमें भी इस बड़ी कामयाबी का तोहफा अता फरमाना, अल्लाह ही हमें भी ये कामयाबी दिखाना, अल्लाह इनमें हमें भी इन्हें नाम याफ्ता लोगों में शामिल फरमाना जिनको ये कामयाबी मिलनी। लिल्लाही मुल्कु समावाती वल अर्दी वमा फीहिन। अब बोलते ना बड़े बादशाहों वाली बात, एंड में क्या आया, अल्लाह ही के लिए बादशाहत है आसमानों की और जमीन की और जो कुछ इसमें है, बादशाह मालिक बा इख्तियार, इनके अंदर जो मर्जी तसर्रुफ करे, जो मर्जी चेंज करे, जैसा मर्जी करे, बादशाहत उसकी है, किसी को मिजाल नहीं कि इसके अंदर कोई बात कह सके, ना किसी फरिश्ते की और ना ही किसी पैगंबर की और ना ही किसी भी इंसान की। वो है बादशाह आसमानों का भी और जमीन का भी और जो कुछ इनमें है। हम इसके बीच में हैं कि नहीं है, या हम कहीं बाहर की मखलूक हैं आसमानों और जमीन के भी बाहर की, तो हमारे ऊपर बादशाहत किसकी है? अल्लाह की। तो मान जाओ ना इस बात को, फिर मानते नहीं है, कहते नहीं मेरे ऊपर किसी और का इख्तियार नहीं, मैं अपनी मर्जी की मालिक खुद, मैं अपनी मालिक खुद, नहीं मेरा मालिक मेरा रब है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज को करने पे कादिर है, जो इंसान की सोच में आ सकती है और जो सोच में नहीं भी आ सकती उस पर भी कादिर है। इतनी प्यारी सूरत पढ़ी है, इसमें अहकामात भी आए हैं, इसमें हलाल और हराम भी आए हैं, इसमें बड़ी तरह से अल्लाह ताला ने हमें बातें समझा दी हैं। जो उसने नाजिल किया है, उसकी तरफ से वही आई है, उसकी अहमियत भी समझा दी है। तो इस सूरत को सीखना चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगियों को इसके मुताबिक ला सकें। अल्लाह ताला हमसे इसका पढ़ना कबूल फरमाए, हमारे लिए अमल करना आसान फरमा दे, इसको हमारे अमल में ले आए अल्लाह ताला। हम सोचते ही ना रह जाएं कि हम सोचते ही रह गए, हाँ करेंगे 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 और जाने का वक्त आ गया, ऐसा ना हो। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम समय ना वाता ना करें, हमने सुन लिया हमने फौरन इताअत करनी शुरू कर दी। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. عذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.